ओम शांति। आवाज आई? ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबको संगमयुगी श्रेष्ठ जीवन और इस ईश्वरीय जीवन में परमात्म प्राप्ति, स्वयं की पहचान, ईश्वरीय परिवार की प्राप्ति, आनंद से भरे हुए जीवन की, पवित्रता से ओतप्रोत इस अत्यंत प्रिय जीवन की, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को ध्यान में रख आगे बढ़ने की, इस जन्म में ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वालों की, और अभी ही संगम युग के सुहेज मनाने की, मधुबन में आने की, सेवा की तकदीर प्राप्त करने की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत स्वागत हो। ये ईश्वरीय जीवन बड़ा अनमोल है, अद्भुत है। ऐसा जीवन और किसी का संसार में हो सकता है? हो नहीं सकता। हमको जो मिलना चाहिए सब मिल गया, सब कुछ मिल गया। सब मिल गया कि मिलना बाकी है? हैं? जो कहते हैं सब मिल गया, हाथ उठाएं, सबको हाथ उठाइए। हाँ बाबूजी, हाथ उठाइए, हाँ लंबा हाथ उठाइए। सबको मिल गया तो एक बार अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ अपने श्रेष्ठ भाग्य की। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ने से पहले हम रिकॉल करते हैं, सीधा बैठ जाएं, आंखों को कम करें, अंतर में आह्वान करें बाबा का। आज जो हम सब ने ईश्वरीय महावाक्य सुने उनको एक बार दोहरा लेते हैं। प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति से जानते हो, इसलिए तुम क्या प्राप्त करते हो? इसलिए तुम अभी संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन प्रीत बुद्धि वाले बने हो, सच्चे सच्चे प्रीत बुद्धि वाले बने हो। तुम अभी आस्तिक बने हो। जी बाबा, आपके ये बोल हमको ईश्वरीय नशे से संपन्न कर देते हैं। इतना बड़ा संसार, इतने लोग ईश्वर विश्वासी परमात्मा को याद कर रहे हैं, ईश्वर की खोज में क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहां मिला है? हमको आप स्वयं मिलकर, हमारी पहचान देकर आपने सच्चा प्रीत बुद्धि बना लिया, हमें तो आस्तिक बना लिया। वाह बाबा। फिर बाबा प्रश्न पूछते हैं कि ईश्वर के बाप के कौन से ऐसे कर्तव्य हैं जिनके कारण उनको भक्तों का रक्षक कहा जाता है? तो बाबा आप कहते हैं, क्योंकि भगवान बाप अभी हमको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, इनसॉल्वेंट को सॉल्वेंट बना देते हैं। जो अपने पुराने भक्त हैं उन अपने पुराने पुराने भक्तों को, पुराने जो भक्त हैं ऐसे भक्तों को ब्राह्मण बनाकर देवता बना देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं। ये मुक्ति जीवन मुक्ति देना, ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही तो भक्तों की रक्षा करना है, यही तो भक्तों के रक्षक बनना है। वाह बाबा, गिनती नहीं की जा सकती है, आप हमें क्या से क्या बनाते, क्या नहीं देते, सब कुछ, स्वयं को और अपना सब कुछ हम बच्चों पर निछावर कर देते। वाह बाबा वाह। धारणा सार में बाबा आप कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता बनना है, सारे विश्व की रूहानी सेवा करनी, सारे विश्व की रूहानी सेवा करनी और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप के मददगार बनना है। वाह बाबा, आप हमको खुदाई खिदमतगार बना दिए। दुनिया जिनसे मदद मांगती वह हम उनके मददगार हैं, हम खुदाई खिदमत करते, हम सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं, हम सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। और बाबा आप कहते हैं कि आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए किसी भी देहधारी को याद न कर एक बाप को याद करना है, और पारलौकिक बाप को याद करना है, उनके संग में रहना है, उनको साथ में लेना है, उनको याद करना है। फिर आप वरदान में कहते हैं आत्मिक उन्नति के साधनों के द्वारा हर परिस्थिति में विजय का अनुभव करने वाले अकाल मूर्त भव, उसके लिए बाबा आप कहते हैं कि जितना जितना आप अकाल तख्त पर बैठकर अकाल मूर्त बनकर के रहते हैं, कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती, विचलित नहीं कर सकती, और आप अकाल मूर्त बनकर बैठते हैं अकाल तख्त पर, तो हम अकाले मृत्यु से बच जाते हैं, हमें काल खा नहीं सकता है, हम अकाल बन जाते हैं, अकाल बन जाते हैं। वाह बाबा, आपने हमें हर स्थिति हर परिस्थिति पर विजय पाने का महामंत्र दे दिए। फिर बाबा आप कहते हैं स्लोगन में कि जो हर बात में फील करता है, फीलिंग में आता है, वो फाइनल में फेल हो जाता है। बाबा आपने सर्व प्राप्तियां देकर, खुशियों का वरदान देकर, सदा हर्षित रहने का महामंत्र देकर, जीवन जीने की कला सिखाकर आप हमको फीलिंग प्रूफ बना दिए, हम साक्षी दृष्टा बन गए। अभी हमें कोई भी बात की फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि हमें आपने हर बात में फूल बना लिया है, फूल बन गए हैं, फूल भी बन गए हैं और हर बात में फूल हो गए हैं, फूल फूल होने के कारण कोई भी चीज की कमी नहीं, इसलिए कभी भी फेल नहीं होते, कभी फीलिंग में नहीं आते। फिर बाबा आप व्यक्ति इशारे में आप कहते हैं सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बन जाओ। बाबा आज आप कहते हैं कि जैसे विष्णु शेष सैया पर क्षीर सागर में सिमरण करने में आनंदित हैं, हर्षित हैं, ऐसे ज्ञान का मनन चिंतन करो। जितना मनन चिंतन करते रहेंगे उतना हर्षित रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में आप हलचल में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको सम्यक ज्ञान मिला है, ईश्वरीय ज्ञान मिला है, अच्छी समझ मिली है। कल भी बाबा आप कह रहे थे कि आप सागर में जैसे हैं, हलचल में साक्षी दृष्टा बन जाओ, अचल रहेंगे। आप एक में कहते हैं कि वातावरण को आप पावरफुल बना दो, वातावरण ऐसा बने कि आपके चेहरे से, खुशनुमा चेहरे से सबको साक्षात्कार हो जाए। वातावरण भारी हो उसमें आपकी मुस्कुराहट वातावरण को, वायुमंडल को हल्का बना देती है। बाबा आप हमें हर स्थिति में सदा हर्षित रहने का महामंत्र देते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। इस तरह से आप रोज बाबा की ईश्वरी महावाक्यों को मनन करें और स्वयं को तैयार करें। जून मास आते ही हम सबको क्या याद आता है, क्या याद आता है, कौन याद आता है? जोर से बोलो, मम्मा याद आती हैं। मम्मा के एक एक विशेषताओं को वर्णन किया जाए तो अनंत गुणों की स्वामिनी थी। मातेश्वरी जगदम्बा के गुणों का बखान कहां तक करें? अच्छा हो कि मातेश्वरी जी की जो एक एक शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को हम अमल में लाएं और इस जून मास को सफल बनाएं। यह संयोग है कि अभी पूरे मास के लिए हमको अव्यक्त इशारे मिलते हैं और जून मास के लिए अव्यक्त इशारा मिला है। क्या मिला है? सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बना दो। इजी नेचर, इजी नेचर हर बात को इजी बना देता है। और क्या करना है? सहनशील बनना है। चार दिन बीते हैं, हर दिन का एक पॉइंट एक जगह सब जगह अलग लिख दीजिए। सदा हर्षित रहने के लिए जून मास में बाबा ने क्या कहा है उसको एक शब्द में डाल दो। साक्षी दृष्टा, वातावरण भारी को हल्का कर देने वाले, विष्णु समान शेष सैया पर ज्ञान विचार सागर मंथन करने वाले सदा हर्षित रह सकते हैं। इन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। पूरे जून मास भर में जो बाबा ने हर्षित रहने के लिए पॉइंट्स दिए बड़े अद्भुत दिए। पिछली बार पिछली उसमें वाणी में कैसे हमारी स्थिति अचल रहे, अडोल रहे। हर मास में इतनी पॉइंट्स मिल रही हैं कि बाबा आपको इतने पॉइंट्स, इतने खजाने, इतना माल पानी देकर आपको हर्षित देखना चाहते हैं। तो सब हर्षित रहेंगे? सब हर्षित हैं? कौन कहते हैं मैं हर्षित रहता हूं? जो कहते हैं मैं हर्षित रहता हूं सदा रहते हैं या कभी कभी? कभी कभी, कभी कभी कुछ बदल जाता है मूड, कुछ चेहरा बदल जाता है। जो समझते हैं हमेशा हर्षित रहते हैं, कभी कोई बात की चिंता नहीं होती, जरा वो हाथ उठाएं। हाथ ही नहीं, बहुत कम उठा रहे हैं। अच्छा, क्या बात है बहने हमारी, कभी कभी हो जाती चिंता? तो बाबा की बात तो याद नहीं रही नहीं? अच्छा, कौन समझते हैं अब हमको कभी भी अपना मूड ऑफ नहीं करना है, कभी रोना नहीं है, सदा हर्षित हम रहेंगे? जो आज के क्लास में ये संकल्प लेते हैं कि अब हम बाबा हमको सदा हर्षित देखना चाहते हैं तो हम बाबा की श्रीमत पर चलकर सदा हर्षित रहेंगे, वो हाथ उठाओ, उठाओ। अभी डर रहे हैं कि क्या पता कल कुछ हो जाए, रोना पड़ जाए कहीं तो, हैं? उसके लिए तैयार हैं? आई वेल के लिए जमा करके रखा है कुछ? बाबा कहते हैं ना, कुछ पॉकेट मनी ऐसे रख देते हैं, सोचते हैं पता नहीं कल जरूरत पड़ जाए तो, हैं? हम सब बच्चे जितने भाग्यवान हैं, जितनी प्राप्ति स्वरूप हैं, अब आज के डेट से पक्का कर लीजिए कि जो बाबा इतनी सेवा हमारी कर रहे हैं, क्या हमें बाबा की इन सेवाओं को लेकर बाबा कहना मानना नहीं है? बाबा हमको हर हाल में प्रसन्नचित देखते हैं, खुशहाल देखना चाहते हैं, आनंदित देखना चाहते हैं, और हम कहें कि बाबा पता नहीं कल हमारी खुशी कहीं कुछ गायब ना हो जाए। हम अपने में डाउट क्यों करें, क्यों डाउट करें? ठीक है, तो आज की क्लास में सब कोई संकल्प ले रहे हैं कि हम सदा प्रसन्नचित रहेंगे। ठीक है, पक्का सब कोई रहेंगे? चलिए फिर आज इस पर विचार कर लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बना लो, सरल नेचर, इजी नेचर, लेजी नेचर नहीं। कौन सा नेचर? इजी नेचर। इजी नेचर का मतलब है कि कोई भी द्वंद ना हो, कोई उज्र ना हो, कोई शिकवा शिकायत ना हो, हम अपने स्वभाव को सरल बना लें। सरल बनाना आसान है? सरल बनाने का मतलब है अहम और वहम से शून्य होना। सरल बनना माना निर्दोष बनना, अबोध बनना, जिसको बाबा कहते हैं एक बच्चे बन जाओ, सरल बच्चे, सरलता। कोई भी बात हो उसमें कहीं पर कोई भी मीन मेख ना हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं तो दिन भर में हमारे कितने मूड बदली होते हैं। बाहर दुनिया में कहते हैं एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, इसलिए जब भी किसी को देखना तो कई बार देखना, लोगों को उनका मूड समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी तो साथ में बैठ के बातें करेंगे, आपको बिल्कुल लगेगा ये तो हमारे अपने हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट क्या होता है? जो अपने ही होते हैं वो स्वार्थों के कारण आज जो अपने होते हैं वही कल पराए हो जाते हैं, बेगाने हो जाते हैं, अपने बेगाने हो जाते हैं। ऐसा है ना दुनिया में? हम किसी से कोई भी अपेक्षा न रखें। अपेक्षाएं और इच्छाएं ये हमारी अप्रसन्नता के सबसे बड़े कारण है। जितनी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी ये इच्छाएं कभी कम नहीं होती। जितना हम भोग में जाते हैं उतना भोग हमको भोग लेते हैं, लेकिन हम भोगों को भोग नहीं पाते हैं। इच्छाएं अनंत होती है, तृष्णाओं का कहीं अंत नहीं, कामना पर कामना निकलती जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं काम को जीतना हो तो शुभ कामना शुभ भावना में स्थित रहो। काम को जीतना है तो इच्छा मात्रम अविद्या बन के रहो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, एकांत में बैठ जाए, मुझे क्या चाहिए क्या लेना है? कहते हैं सुकरात यूनान का बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक था, वो जाता था, बड़ा सिंपल होता था, चेहरा अच्छा नहीं होता था, उसकी पत्नी जो है तो उसके ऊपर कभी कूड़ा करकट फेंक देना, कभी कुछ करना, वो और भी तंग करती थी उसको, लेकिन वो मन से बड़ा सुंदर था, भले कुरूप था लेकिन मन से बड़ा सुंदर। सुकरात को बाद में जहर दे दिया गया। तो सुकरात रोज जाता था, सोचता था मॉल है, बहुत बड़ी दुकान, बहुत बड़ा मॉल है, और वहां जाके सामने खड़ा होके बड़े गौर सब देखता था, ऐसे ऐसे करके एक एक चीज देखता था, सारे सामानों को देखता था, बड़ा सिंपल रहा करता था, कोई संग्रह नहीं था, कोई साधन बहुत ज्यादा नहीं थे, कोई ज्यादा धनाढ्य भी नहीं था, देखता था एक ही कपड़ा है, चलो ले लेता हूं मॉल में वहां जाके, और वहां जब पहुंचता था तो पूरा देखता था, देखने के बाद फिर वापस आ जाता था, कहता था मैं क्या ये लेकर के आया हूं, क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा? और जब देख करके पूरा देख लेता था, कहता नहीं मैं इसके बिना भी रह सकता, जब अभी हूं तो आगे भी रह लूंगा, फिर चला आता था। रोज जाता था, रोज जरूरत पड़ती थी, रोज जरूरत है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सब देखने के बाद सोचता था मेरे कोई काम के नहीं, इनकी जरूरत ही नहीं, मेरा ऐसे ही काम चल जाएगा। ऐसे ही इस दुनिया को देखो, बड़े गौर से देखें, मुझे क्या चाहिए, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। बाबा घर चलने की तैयारी करते हैं और मैं कहता हूं बाबा अभी थोड़ा रुकने को मन करता है, क्यों रुकूं, किसके लिए रुकूं, क्या रखा है दुनिया में, क्या है हमारे काम का। तो अपने आगे एक बोर्ड लगा दे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये मेरे कोई काम की नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तन में पुराने ठहरे हैं हम बाबा तेरे ही खातिर, और जग में पुराने ठहरे हैं हम जग परिवर्तन के खातिर। बाबा ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ करें, फील करें, बाबा हम आपके लिए इस दुनिया में ठहरे, मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, आप मिले सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। आनंद से भर जाए, सब कुछ तो मिला, फिर कुछ चाहिए क्या, कपड़े चाहिए, कपड़े अच्छे अच्छे चाहिए। बाबा कहते तुम तो बनवा में बैठे, तुमको तो शरीर को ढकना है, कफनी पहन के घूम रहे हैं, क्या चाहिए हमारे बीकेस को, तो और भी कुछ नहीं, वो तो मस्त है, ये दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, कोई कामना नहीं है। कामना बहनों, कामना होता है सेंटर नया बन जाए, स्टूडेंट और बढ़ जाएं, सेवा खूब अच्छी हो जाए, ऐसा चाहते हैं, ये भी नहीं चाहते। क्या है, बाबा का है, बाबा करेगा, है ना, इसकी भी कामना नहीं, कोई कामना नहीं। हम ब्राह्मण हैं जिनको बोरिया बिस्तर, पुराना दुनिया से लंगर जो है वो उठ चुका है, सबका उठ चुका है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, है? बताओ, हाथ उठाओ, उठाओ, सबका उठ चुका है या चाहिए, नाती पोता देखना है, है किसी में मोह, कोई सूरत कोई मूरत कोई मन में बसा तो नहीं है, है? जब याद करते हैं तो वो याद आता है, ऐसा तो नहीं, कल शरीर छोड़े कहीं पर हमारी बुद्धि रुकेगी तो नहीं, बोलो भाई, है? कहीं हमारी बुद्धि कहीं टिकी तो नहीं, कहीं कोने में कुछ जेवर कुछ पैसा कुछ संभाल के कुछ रखा हो, जो भी रखा होगा, जितना छोड़ा भी रखा होगा, छिपा के रखा होगा, बुद्धि में वही याद आएगा, और थोड़े से कौड़ियों के पीछे आप कल्प कल्प का भाग्य समाप्त कर देंगे। पूरे जीवन भर जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, बाबा को याद करते हैं, दुनिया को भूलते हैं, संसार को भूलने का प्रयास करते हैं, और यही लक्ष्य बनते हैं रखते हैं कि अंत मते सागते आ जाए, अंत मते सागते, अंत में कोई याद ना आए। दुनिया में भी लोग कहते हैं कोटि कोटि मुनि यत्न कराही अंत राम कही आवत नाही, बहुत कोशिश करने के बाद। और यहां बाबा कहते हैं बच्चे अंत मते सगते होने के लिए लंबे समय तक अचानक एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। हमने दादियों को देखा, इतनी दादियां थीं, सोचिए कितने लोगों के अरमान दुनिया में होते हैं, लेकिन उन सब दादियों ने एक धक से अपने महलों को, अपने सुख सुविधा के सारे साधनों को सब कुछ छोड़ करके और ईश्वरीय यज्ञ में जीते जी स्वाहा हो गई, और पूरा जीवन सैकड़ों साल, जीवन के सौ सौ साल अपने जीवन को ऐसा तपाया, ऐसे रहे कि दुनिया में मन गया ही नहीं, आज तो हमारी कई बहनें ऐसी होती हैं, कहती हैं सेंटर पर समर्पित क्या हूं, थोड़ा जॉब कर लूं, थोड़ा ये भी कर लूं, थोड़ा वो भी कर लूं। निश्चय बुद्धि होना, जो संगम युग में अपने शरीर को बाबा के हवाले यज्ञ में समर्पित कर देते हैं, उनके तन की गारंटी भगवान स्वयं ले लेता है। अगर हमारी बुद्धि कहीं इंगेज नहीं है तो एक नहीं, मैं आपको दसियों उदाहरण बता रहा हूं, बहुत उदाहरण है कि वहां पर बहने हैं समर्पित हैं, बाबा का मैसेज आता है बच्ची यहां से चलो, संकट का समय होता है, बाढ़ आ रही है, बहने पानी में फंसी हैं, इतने में फ्लाइट आता है, हेलीकॉप्टर आता है, बिठा के उनको पहुंचा देता है। कहीं अर्थक्वेक आता है, बहने वहां योग तपस्या किए हैं, आसपास के सारे मकान धराशाही, लेकिन बाबा के मकान वैसे के वैसे। ये क्यों? क्योंकि अंदर में उन्होंने अपना संपूर्ण सब इच्छाओं को, कामनाओं को, तृष्णाओं को, सारा जीवन खपा दिया, बाबा की सेवा में लगा दिया, कोई चिंता नहीं। इसलिए भगवान उनके तन की भी संभाल करता है। जो समर्पित नहीं होते हैं और जो समर्पित होते हैं उनमें यही फर्क है। आप घरों में रह लेंगे, ज्ञान योग खूब कर लीजिए, आप सोचते हैं जॉब कर लो थोड़ा सा अच्छा है, मैं थोड़ा ये भी मदद करूंगी यज्ञ में, आजकल इसके बिना काम नहीं चलता, देना तो पड़ता है, यहां भी चढ़ाओ वहां भी चढ़ाओ, चढ़ाना तो पड़ता है, बिना इसके तो काम चलता नहीं है। बहने आपको उदाहरण एक बताता हूं, बाबा के जमाने में दादियों को सिखाया बाबा ने, बच्ची जाओ लेकिन ध्यान में रखना किसी से मांगना नहीं, मांगने से मरना भला, ये पक्का कराया। दादी शांतामणि दादी लखनऊ के बाबूजी थे, उन्होंने बाबा को कहा बाबा दादियों को भेजिए लखनऊ में सेवा के लिए भेजिए। बाबा ने भेजा शांतामणि दादी को, बाबूजी को बहुत खुशी हुई कि दादी बाबा ने भेजा दादी को, उन्होंने पूरा सेंटर के जितने कनस्तर थे सब भर दिए बराबर। कुछ दिन बाद उनको ख्याल में उतर गया इससे, एक दिन दादी से पूछते हैं दादी खाना खाया? अच्छा चलो ठीक है। दूसरे टाइम पूछा दादी खाना खाया? फिर खाया दादी, हाँ ठीक है खा लिया। फिर अलग टाइम पूछा, उनको डाउट हुआ कि ये क्या हो रहा है, धुआं तो निकला नहीं, लकड़ी जलाते थे उन दिनों में, कुछ तो हुआ ही नहीं, कब बनाया कब खाया? और जब भी पूछो दादी कहते हैं हाँ खा लिया। तीसरी बार पूछा, अंदर में उनको डाउट हुआ, गए देखे एक भी कनस्तर में ना अनाज ना चाय की पत्ती तक, एक दाना तक भी कुछ नहीं था। बहुत रोना आया, बहुत पश्चाताप हुआ, बड़ा अपराध बोध हुआ कि दादियां तो मांगने वाली नहीं है और इनसे पूछना थोड़े है, ये मेरा कर्तव्य है कि इनको बुलाया है, देखना हमारा काम है, ये थोड़े कहेंगे तुम सब्जी ले आओ ये वो ले आओ। तब से उन्होंने बिना पूछे जाना बराबर पूरा स्टॉक भरना, लेकिन ये तब हुआ जब दादियों ने कुछ मांगा नहीं। आज स्थितियां परिस्थितियां बदली रहती हैं, रल रूप से भी हमारे मांगने के संस्कार हो गए हैं, अंदर मांगते रहते कुछ ना कुछ तो इशारा देना ही पड़ता है भाई, कुछ ना कुछ कहना ही पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता है तो जाएंगे कैसे, लोग देते ही नहीं है, करते नहीं है, खा पी के भी घूम जाने वाले हैं ऐसा समझ लेते हैं हम, लेकिन नहीं। जहां त्याग है, जहां तपस्या है, जहां बेहद का वैराग्य, वहां भंडारा और भंडारी दोनों क्या है, दोनों भरपूर है, वहां कोई भी चीज किसी भी चीज की कभी कमी हो ही नहीं सकती। इसलिए सदा हर्षित रहना है, कोई कामना ना हो, कामना रहेगी तो परिस्थितियों का आप सामना नहीं कर सकते हैं, तो सदैव हर्षित रहने के लिए इच्छाएं और अपेक्षाएं बहुत बड़ा कारण है। दूसरी असंतुष्टता, असंतोष, ये हमें सदा हर्षित नहीं रहने देता है। मुझे चाहिए, ये जब तक चाहिए कामनाएं रहेंगी, असंतोष रहेंगे तो अप्रसन्न रहेंगे, और जिनका मन संतुष्ट है, स्थिति संतुष्ट है। एक है भोग करके संतुष्ट होना, वो कभी भी संतुष्टता नहीं आती, और एक है ज्ञान से संतुष्ट होना। अपने आप को ज्ञान के मनन चिंतन में इतना व्यस्त करें, अच्छे ज्ञान के द्वारा जो मन में कोई भी प्रकार की कामनाएं रहे ही नहीं, इच्छाएं रहे ही नहीं, क्योंकि हमारे इस ईश्वरीय ज्ञान का सबसे बड़ा सूत्र है जो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें सदैव हर्षित रहना है। बाबा की मुरली को पढ़िए, कोई भी मुरली में ऐसा नहीं है जिस मुरली में एक पॉइंट ऐसा ना आए कि बच्चे सदा हर्षित रहने के लिए ये करो, तुमको ये पॉइंट को उगारना है, सदा हर्षित रहने के लिए ये करो, सदा हर्षित रहने के लिए ये कहो। दादियों का स्लोगन था कि जान जाए लेकिन बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं, बड़े मौन में हो गया, बोलो, जान जाए लेकिन खुशी ना जाए। अरे भाई, जान ही चली जाए तो खुशी कहां रहेगी, लेकिन कहने में आता है, कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी खुशी नहीं है। हमारी खुशी को गायब करने के लिए, दुनिया की खुशी को, जितनी खुशी मिली है उसको गायब करने के लिए एक दो कारण नहीं है, बड़े बहाने हैं, बड़े कारण हैं। लेकिन अगर खुश रहना है तो एक बात ठान लो कि मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे खुश रहना है। खुश रहने की ठान लो। गर्मी में जा रहे थे कहीं, देखा एक दुकान पर, वहां वो पानी आसपास नहीं मिल रहा था, तो कहीं पर अपने एक भाई ने देखा भाई वहां वो कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है, तो कहा चलो यही पी लेते हैं। वहां पर गए तो कोल्ड ड्रिंक वाला वो बोतल निकालता है, ऐसे निकालता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे करता है, बोतल ऐसे उछलती है, फिर बोतल पकड़ता है, फिर ढक्कन को यूं करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, बोतल को नचा करके, जैसे वो खुद नाच रहा है, बोतल नचा करके दे रहा है। तो कहा भाई आप तो बड़े खुश दिखाई पड़ते हैं। कहते हां भाई, मैंने सोच लिया दुनिया तो रुलाती है लेकिन मुझे रोना नहीं है, मुझे खुश रहना है, मैंने ठान लिया है। कैसा है भाई करके, कुछ भी हालत हो, कोई चाहे ना चाहे, लेकिन मुझे कोई नाराज नहीं कर सकता है, मैंने खुश रहने की ठान ली। ऐसे ब्राह्मणों को खुश रहने की ठान लेनी है, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। रुलाने वाली बहुत चीजें हैं, नाराज करने वाली बहुत चीजें हैं, स्थितियां परिस्थितियां वो बराबर, आप पेपर हॉल में ही हैं, और पेपर हॉल में बैठकर हर कोई, हर व्यक्ति आपका एग्जामिनर है, आप एग्जामिनी आप ही हैं, बस परीक्षा देने वाले आप हैं, बाकी सारे परीक्षक हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हैं। सुबह से शाम देखता हूं कितना खुश रहते हो, माया भी देखती है कितने खुश रहते हैं, है ना। तो आपको निश्चय करना है इस ईश्वरीय जीवन में हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, ये मेरा अपना नेचर है। और हम ब्राह्मण अगर खुश नहीं रहेंगे, हम ईश्वरीय जीवन वाले खुश नहीं रहेंगे, भगवान को पाकर खुश नहीं रहेंगे, ईश्वरीय परिवार को पाकर खुश नहीं रहेंगे, सब कुछ पाकर भी खुश न रहेंगे, संगम युग में न खुश रहेंगे, तो कब रहेंगे और कैसे रहेंगे, कब रहेंगे और कैसे रहेंगे, है ना। अभिनंदन करो अपने लिए कि हमारे लिए हमारे पाने का कोई और कुछ जरूरत रही ही नहीं गई, सबको यही गए। प्रभु मिलन के मस्तियों में झूमता मन गा रहा, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा है। हो गया जब प्रभु ही अपना, तो न कोई गैर है, सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के गागर में समाता जा रहा, पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा, आनंद में। ठीक है, इसलिए सदा खुश रहने की ठान लेनी है। और सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, और गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरें, और अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें। हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो। हम सब ने पक्का कर लिया है कि जो हुआ, बोलो, हाँ बोलो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है पक्का, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा और अच्छा होगा, और अच्छा होगा ना। हाँ, जो कहते हैं बिल्कुल ये ठीक है, हाथ उठाइए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, पक्का? माया सुन रही है, यहां से बाहर निकलते ही परीक्षा हो जाएगी। हैं? ये धारणा अंदर में गाने का है, बाहर नहीं। कहीं सड़क पर का एक्सीडेंट हो गया और जो हुआ, अगर ऐसा करना शुरू कर दिया तो लोग डंडा लेकर पीछे पड़ेंगे, है ना। और ऐसा भी नहीं, घर में आग लगी है और आप बैठे हैं, वाह ज्ञानी, जो हो रहा है, ये भी नहीं, ये भी हमारा ज्ञान नहीं कहता है। ज्ञान कहता है पूरा लगो, जो हो सकता है करो, जितना हो सका है उतना करो, बाद में हाय हाय नहीं करो। बाद के लिए कहा गया, जो हुआ अच्छा हुआ, होने के बाद। हमारे ब्राह्मण जो हुआ इसमें तो पक्का है। वैसे तो शुरू में जब कोई ज्ञान में आता है और जब उसको पता लगता है कि जो हुआ है वो फिर होगा, कहते भैया फिर होगा, फिर वही होगा, इतना घबराए होते हैं कि ये तो अंदर अंदर लेना नहीं चाहते। लेकिन जब ज्ञान में आने के बाद कुछ दिन आनंद आने लगता है, तब समझते हैं, हाँ अगर वो ना हुआ होता तो हम यहां ना हुए होते, तब लगता है अच्छा है। लेकिन शुरू में अच्छा नहीं लगता है। तो ब्राह्मणों में दो बातें तो पक्का है, एक तो जो हुआ अच्छा हुआ, ये तो पक्का हो गया है। अगर वो ना होता तो आज हम मधुबन में बाबा के पास यहां घर में कैसे बैठे होते, धक्का मार के घर से निकाला आपको, अच्छा हुआ नहीं तभी तो यहां पर है। अगर धक्का मार के ना निकाला होता तो यहां तक कौन पहुंचता भाई, माया के तो बड़े प्रलोभन है। और दूसरी बात पक्का है ब्राह्मणों का कि जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन क्या पक्का करना है, क्या पक्का करना है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। समझो एक्सीडेंट हो गया उस समय पर, उस समय आपके मन में ये क्या हुआ, ऐसे कुछ हो गया, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, उस समय हड़बड़ होता है, बड़ी परीक्षा होती है। बाद में ज्ञान होने के कारण कहते हैं यो हो गया ना, देखो भला रहा, आंखें खुलती हैं। अगर आपने पक्का कर लिया तो हर घटना के पीछे आपको ये बात का अनुभव होगा कि ये जो हुआ बड़े कल्याण के लिए हुआ। मुझे तो इतना अच्छा लगता है हर बात में कि पक्का है, दिन भर में बार बार यही आता है, ये पूरा स्लोगन बना लिया है, कई बार गीत भी गाते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। चलो कुछ कहा किसने, क्या हो गया है? उसमें है, कह रहा क्या हुआ जो रो दिए, लाए क्या जो खो दिए, क्या बनाए जो मिट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। जो लिया सब कुछ यहीं से, जो दिया सब कुछ यहीं पे, लाए क्या जो लुट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। कल तलक जो तेरा था आज है किसी और का, कल किसी का हो जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, और होगा जो अच्छा ही होगा। बदलते इस विश्व का सब कुछ बदलता जा रहा, अरे चिंता करके क्या हुआ, सोच करके क्या हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। शिव की रचना सत्य सुंदर है, सुमंगल और सुकर, सोच करके क्या हुआ। पुण्य की पूंजी कमा ले, भाग्य तू अपना बना ले, सेवा करके ले दुआ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा हो रहा अच्छा हो रहा, और जो होगा वो और अच्छा होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। कई घटनाएं होती हैं, ढेरों उदाहरण हैं हम सब ब्राह्मणों के लिए, कि उन्होंने देखा कि जो होता है ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। सदा हर्षित रहने के लिए सदैव को साक्षी दृष्टा बना ले। और आज जैसा बाबा ने कहा कि कोई चीज में फील होना, हर बात में फील होना, ये फाइनल पेपर में फेल कर देगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम सब ब्राह्मणों को दोनों स्थितियों में, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप में सहनशील बनना होगा। हमारी अप्रसन्नता के कारण अधैर्यता है, अधीरता, हमारी अप्रसन्नता का कारण असंतुष्टता है, हमारी अप्रसन्नता का कारण असंतोष है, हमारी अप्रसन्नता का कारण असहिष्णुता है, जिसमें सहन नहीं होता है तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे करके नोट कीजिएगा, बहुत सारे कारण मिलेंगे। तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे ब्राह्मणों में ज्यों-ज्यों नॉलेज आगे बढ़ता जा रहा है, इतना अव्यक्त मुरलियां पढ़ लिया, ढेर सारे नॉलेज आ गई, बाबा ने ये कहा वो कहा, अब इंफॉर्मेशन तो बहुत आ गई पॉइंट्स, लेकिन धारण करना कैसे है, पढ़ना थोड़ा, धारण करना ज्यादा। पढ़े लिखे होना अलग है और गढ़े होना अलग है। दादियों ने अपने जीवन में ला करके देखा, अब हम सबको जो भी पढ़ा है उसका स्वरूप बनना है, फीलिंग प्रूफ बनना है। फीलिंग का मतलब है हर बात में फीलिंग आना, थोड़ा पंखा न चला, ओहो ओहो, जिसे पिघल गए, थोड़ी ठंडी लगी सिकुड़ गए, ओहो सिकुड़ गए, थोड़ा किसी ने कह दिया, थोड़ा प्रशंसा कर दी, सुख दुख हर्ष शोक जय पराजय सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान दोस्त दुश्मन सब परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में देखें। कई भाई बहने बड़े सेंसिटिव नेचर है, वो अति संवेदनशील है, ये अति संवेदनशीलता बहुत नुकसान करती है। कितने भाई बहनों के ऐसे होता है, भैया क्या करूं, मेरे कमरे में एक भाई है दूसरा, वो जब आता है तो सब इतना आवाज करता है कि नींद ही खराब कर देता है, या फिर मेरे कमरे में ये होता है कि पंखा चला देता है, मुझे ठंडी लगती है खूब पंखा चला देता है, हमेशा कुछ ना कुछ। अपनी स्थिति को ऐसा बनाओ, मैंने तो अपने को बना लिया, हमारे कमरे में या कहीं पर भी कोई कुछ हो सकता है, उनको हमारे कारण असुविधा हो, लेकिन मैंने अपने लिए आओ जितना चाहे उतना लाइट जला दो, मैं जब सोना होगा तो सो लूंगा, आओ पंखा चलाओ तो भी सो लूंगा, और पंखा बंद है तो भी सो लूंगा। हर परिस्थिति में देखा है, अपने को इतना सेट किया है, कोई उज्र नहीं, आज तक कोई से भी कोई शिकायत नहीं कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। जब तक ब्राह्मण जीवन में आप सुकुमार रहेंगे, नाजुक रहेंगे, मन से भी, तन से भी, जन से भी, हर प्रकार से आप नाराज होते रहेंगे, आप अपनी खुशी को गायब करते रहेंगे। इसलिए अपने आप को किसी भी हालत में नाराज नहीं करना है, खुश रहना है, ठीक है। तो आप जो है उसके लिए खेल जमाने के यूं ही चलते रहेंगे, कभी तू ख्याल न कर, कहने वाले कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कभी परवाह न कर। नेक राह पर चलते जो उन्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर सेवा करने वाले इतिहास नया नित रचते हैं। फूल और कांटे यूं ही मिलते रहेंगे, कभी तू आह न कर, और कहने वाले कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कभी परवाह न कर, कभी परवाह न। सुखी जो रूखी सूखी खाते और प्रभु गुण गाते हैं, सुखी जो रूखी सूखी खाते और प्रभु गुण गाते हैं, चांद सितारे चाहने वाले धूल और मिट्टी लाते हैं। धूल और गए इतनी दूर चांद पे गए और लाए क्या, मिट्टी लेकर आ गए। लो तो सुखी जो रूखी सूखी खाते और प्रभु गुण गाते हैं, चांद सितारे चाहने वाले धूल और मिट्टी पाते हैं। चांद तारे यूं चमकते ही रहेंगे, तो इनकी चाह न कर। कोई कहे आपको कि आप हमारी बन जाओ, हम आपके लिए चांद लाएंगे, तारे लाएंगे, तो उनके उनके उसमें मत जाइएगा, ये दुनिया के ये धोखे हैं। कोई बोलो अपना तू ठीक कर ले भैया, इसलिए किसी के चक्कर में मत आइए। चांद तारे यूं चमकते ही रहेंगे, तो इनकी चाह न कर, और कहने वाले कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कभी परवाह न कर। देख किसी के महल दुमहले, प्यारे दुखी नहीं होना, और जो भी चमकता है दुनिया में वो सब तो है नहीं सोना। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जो चमकता है वो सब सोना नहीं होता है। ये दुनिया बड़ी चमकीली है, देखने में बहुत कुछ है कुछ नहीं, पोपली खाली खाली, पोली पोली। इसलिए भोली मत बनिए, भोले मत बनिए। देख किसी के महल दुमहले, प्यारे दुखी नहीं होना, और जो भी चमकता है दुनिया में वो सब तो नहीं सोना। बिन मांगे मोती तुझे मिलते रहेंगे, किसी से डाह न कर, डाह माना ईर्ष्या, किसी से डाह न कर, और कहने वाले कुछ न कुछ कहते रहेंगे, कभी परवाह न कर। कोई कुछ भी कह ले, हमारे भाई बहनों में ये होता है कि दुनिया कुछ भी कह ले, ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे हैं वैसे हैं, आप सुन लेंगे। लेकिन जो हमारी सबसे प्रिय एक दीदी है, दीदी ने मुझे क्यों कह दिया, दीदी ने ऐसा क्यों कह दिया। अब एक दुनिया में हमारी दीदी थी और दीदी ने ऐसा बोल दिया तो मेरे पांव के नीचे की जमीन ही खिसक गई। इसलिए भाइयों और बहनों, लौकिक से ऊपर उठो, अलौकिक से भी ऊपर उठो। कोई कुछ भी कह ले, छुई मुई मत बनो, टच मी नॉट, ऐसा नहीं, शर्म बूटी नहीं, लाजवंती नहीं, पक्का बनो, दृढ़ बनो, संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। रोजाना मेरी चार पांच बातें हैं, नोट कर लें। एक स्वमान ले लें सवेरे, और दिन भर में उस स्वमान का अभ्यास करें। दिन भर में 15 बार 20 बार कर लें, आपको बहुत मदद करेगा, स्वमान से शक्तिशाली बने। दूसरा, अमृत वेला पावरफुल करें, अपने को सर्व शक्तियों से भर लें। तीसरा, अमृत वेले का योग है, अमृत वेला योग कर लें पक्का। फिर मुरली को पक्का कर लें, मुरली को पक्का कर लें। ज्ञान के मनन चिंतन से स्वयं को शक्तिशाली बना लें। फिर एकांत में बैठें, पांचों स्वरूपों का अभ्यास भी करें और अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करें, और अंत में सबको धन्यवाद दे दें। सबका धन्यवाद, थैंक यू, आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।